आज हम चलेंगे दुआ नंबर 9 पे, पेज नंबर 17 है, पहली दुआ है, शुरू करेंगे। नखमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फौसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बि यस्सिर व ला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर। दम ज़रिया इलाज, हम इसमें जादू से मुतल्लिक यानी जादू के इलाज के मुतल्लिक कुछ दुआएं सीख रहे हैं। इन दुआओं के दो हिस्से थे, एक वो थे कि जिनको जादू का असर होने से पहले मांगना है, वो हो चुकी। अब हम कर रहे हैं कि अगर किसी को अपने या किसी दूसरे के ऊपर किसी असर की कैफियत महसूस हो, कोई अनयूजुअल चीज़ महसूस होती है, तो वो फिर क्या करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम 8 दुआएं सीख चुके हैं, आज हम नवीं दुआ पे करेंगे, पेज नंबर 17 पहला बिल्कुल शुरू में, आप मेरे साथ दोहराएंगे। और यहाँ एक छोटी सी बात बता दूँ कि ये जो दुआ है, यहाँ तो हम इसको दुआ पे करें, लेकिन आपको ये किताबों में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के दम की नाम से भी मिलेगी। यानी एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए थे, होते हैं इंसान बीमार, नेक भी होते हैं बद भी होते हैं, लेकिन इलाज के तरीके फ़र्क होते हैं और इजहार का तरीका भी फ़र्क होता है। तो ये जो अभी हम पढ़ने लगे हैं, आप कह लीजिए कि इसकी ख़ास खूबी कि एक फरिश्ते की ज़ुबान से अल्लाह ताला ने ये नबी के ऊपर कहलवाई और आज हम तक पहुंच गई। तो आइए पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाही अरकीका अरकीका। आप देख रहे हैं कि एक ही लफ्ज़ में दोनों काफ आ रहे हैं ना, का और का। तो अगर आप इसको ऐसे पढ़ते हैं अरकीका तो ठीक पढ़ा, या आप इसको पढ़ते हैं अरकीका, नहीं, यहाँ आप फ़र्क महसूस करेंगे और आपको तजवीद के सेशन को अटेंड करने की अहमियत समझ आएगी। तो यहाँ काफ और काफ का इतना माइन्यूट सा फ़र्क है कि अगर मैं आपको बताऊँ तो मानी ही बदल जाएंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम, अर की। अब आपको बताने के लिए मैं थोड़ा सा रुक रुक के बोल रही हूँ, अर की का 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 का, यानी दोनों का फ़र्क इतना हल्का सा है कि शुरू में खुद को भी नहीं पता चलता। ठीक है, तो पढ़ते हैं, अर की का मिन कुल्ली शई इन
युज़ीका
वमिन शर्री कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यश्फीका। बिस्मिल्लाही अरकीका। दोहराते हैं एक बार, क्योंकि इसमें थोड़े से अल्फाज ऐसे हैं कि जिसको जिनको प्रैक्टिस की जरूरत है। बिस्मिल्लाही अरकीका मिन कुल्ली शैइन युज़ीका वमिन शर्री कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यश्फीका। बिस्मिल्लाही अरकीका। अब इसका लफ्जी तर्जमा लिखिएगा, आपको आज इसमें से एक लफ्ज मिलेगा जो खुशी होगी जब सुनते हैं, लेकिन इस दुआ में आप उसको भी पहचान नहीं पा रहे होंगे। तो लिखते हैं, बिस्मिल्लाही सात नाम अल्लाह के, बिस्मिल्लाही सात नाम अल्लाह के, अरकीका मैं रुकिया करता हूँ तुम पर। अब ये मैंने जान के पढ़ा है, क्योंकि लफ्ज़ रुकिया है इसमें, बहुत मारूफ लफ्ज़ है, आजकल लोग इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हैं। और यहाँ इसका मानी क्या है, अब मैं उर्दू में बोलूँगी, रुकिया असल में अरबी का ही लफ्ज़ था, लेकिन ये तर्जमा मैंने आपको थोड़ा सा शऊर दिलाने के लिए किया कि इस लफ्ज़ में अरकीका में रुकिया है, लेकिन उर्दू में इसका तर्जमा क्या होगा, मैं दम करता हूँ तुझको मिन से कुल्ली हर शई इन चीज़ युज़ीका जो तकलीफ दे तुझको व मिन शर्री और शर से कुल्ली नफ्सिन हर नफ्स के औ या ऐनिन आँख या निगाह हासिदिन हसद करने वाले की अल्लाहु अल्लाह यशफीका शिफा दे तुझको। बिस्मिल्लाही सात नाम अल्लाह के अरकीका मैं तुझे दम करता हूँ। पूरा एक स्ट्रेच में इसका तर्जमा क्या है कि मैं अल्लाह के नाम से दम करता हूँ तुझे तकलीफ देने वाली हर चीज़ से, हर इंसान या हसद करने वाली नज़र के शर से। अल्लाह तुझे शिफा दे, मैं अल्लाह ताला के नाम से तुझे दम करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत दुआ है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं ताकि जब हम इसको पढ़ें तो हम इसकी खूबसूरती को महसूस करें। सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? बिस्मिल्लाह। ये वो लफ्ज़ है जिससे अल्लाह का कुरान शुरू होता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू हो उसमें अल्लाह की तरफ से बरकत होती है। और बल्कि इसके ऑपोजिट भी आपकी रिवायत मिलती है कि हर वो काम जो बिस्मिल्लाह के बग़ैर शुरू किया जाए वो अबतर है। और अबतर अरबी ज़ुबान में कहते हैं जड़ कटे को। ये वही लफ्ज़ है जो सूरत कौसर में आता है, इन नशानिया का हुवल अबतर। क्या मतलब? कि जड़ कट जाएगी यानी वो फ्लरिश नहीं करेगा। कितने काम हम जिंदगी में शुरू करते हैं फिर वो कहाँ जाते हैं? अधूरे मंसूबे, जिसको आप कह लीजिए कि वो ड्रीम्स जो कभी ट्रू ना हुए, ये अल्लाह के नाम के ना होने की वजह से होता है। बस अब इंसान जज्बात में आकर, बाज़ दफ़ा इमोशनली, बाज़ दफ़ा किसी को देखकर कोई नेकी का काम शुरू करता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो काम आगे बढ़े फैले तो उसमें अल्लाह का नाम डालिए। चाहे वो काम दुनिया का है चाहे वो दीन का है, अल्लाह के लिए करें, अल्लाह की दी हुई गाइडलाइन में करें तो वो काम बढ़ेगा। जी, इमाम मालिक ने एक किताब लिखी थी मोता, मीम वाव तो अलिफ। तो जब वो किताब बहुत मारूफ हुई तो बहुत सारे लोगों ने उसकी नकल में और किताबें लिखी, उनके नाम में भी कहीं ना कहीं मोता लगाया। तो इमाम मालिक के पास ये बात पहुंची कि आपको पता है लोगों ने आपकी किताब जैसी नाम रख के और किताबें लिखनी शुरू कर दी हैं, यानी उनको वॉर्न किया कि कॉपी है। तो उन्होंने कहा डोंट वरी, यानी अपनी ज़ुबान में कहने लगे कोई बात नहीं, मा काना लिल्लाही बकिया, जो काम अल्लाह के लिए कोई करेगा वही बचेगा। और आज ये बात उनकी 100% सच है। आज सिर्फ एक ही मौता है मार्केट में जिसको मौता इमाम मालिक कहते हैं। दूसरों ने कोशिश तो की लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं बना सके तो वो काम ख़त्म हो गया। तो जिस चीज़ में अल्लाह का नाम आएगा ना, और याद रखिए कि मैं आप इसको कहते हैं कुरान पढ़ने से पहले अल्लाह का नाम, सूरह फातिहा पढ़ने से पहले अल्लाह का नाम, 113 आयतें पढ़ी तो अल्लाह का नाम। हम बिस्मिल्लाह को कहाँ सोचते हैं? कुरान पढ़ने से पहले, खाना खाने से पहले, और क्या सोचते हैं? घर से निकलते हुए बिस्मिल्लाह ही तवक्कल। तो हमने इस बिस्मिल्लाह को दो तीन चार दुआओं के साथ या कुछ कामों के साथ जोड़ा हुआ है। हालांकि बिस्मिल्लाह बंदे मोमिन की सुबह से लेकर रात के हर काम के अंदर होगा। बिस्मिल्लाह क्या है? हर काम से पहले, खुशी, शादी, गम, रिश्ता, मंगनी, ब्याह, आप अपनी ज़िंदगी खाना बनाने लगे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करूं, यानी अल्लाह की तरफ से एक बरकत डल जाती है उस काम में, और फिर वो काम कभी नाफरमानी से नहीं होता। और बिस्मिल्लाह पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि बंदा गलत कामों से रुक जाता है। ये नहीं है कि बिस्मिल्लाह ही थप्पड़ मारने लगी हूँ, बिस्मिल्लाह ही मैं किसी को की गइबत करने लगी हूँ। तो मुझे वो तफसीर के कुछ पॉइंट याद आ गए जो हमने एक साल की तफसीर के शुरू में बिस्मिल्लाह की तफसीर में किए थे। तो आज सुबह भी मैं सुन रही थी, हमारा कल जो कोर्स शुरू हुआ तो आज सुबह उसका रीप्ले था, तो ऐसे ही मैंने सुनना शुरू किया तो उसमें तावुज़ और बिस्मिल्लाह की तफसीर थी। तो मैं ये सोच रही थी कि इतनी बड़ी ये चीज़ है बिस्मिल्लाह कि अगर मेरी आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाए तो किसी को हमारे अंदर कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही ना हो। तो लिहाजा बिस्मिल्लाह, एक ईमान वाले का अल्लाह के साथ ताल्लुक ही असल में उसकी कामयाबी की दलील होता है। आप क्या करने गए थे? इलाज करने गए थे। आपने देखा किसी के ऊपर कोई असर है या अनयूजल चीज़ है तो आप शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह से, बस यहीं से बात शुरू हो जाती है। अगर आपने लफ्ज़ अल्लाह को पहचान लिया, अल्लाह के इलाह होने को, उसकी वो 6 सिफात को जो इलाह के लफ्ज़ में आती हैं, तो आधी बीमारी तो इंशाल्लाह वहीं ठीक हो जाएगी। फिर आप देखिए लफ्ज़ है अरकीका, मैं रुकिया करता हूँ। ये जो लफ्ज़ रुकिया है ना, असल में इसको फूकने को कहते हैं, ब्लो करना इंग्लिश में कहते हैं ना, ये फीलिंग जो आती है ना साउंड, ये है रुकिया। और ये इसका एक बस सिंपल तरीका से होता है कि बस कोई भी चीज़ है उसको हल्का सा ब्लो कर देना। हमारे यहाँ इसके जो मुख्तलिफ तरीके हैं पीछे बात कर चुके हैं, पानी पे पानी पीना और लोगों के मुंह पे फूके मारना या बिल्कुल अपनी कार्बन डाइऑक्साइड उसको देना, इसकी इजाज़त नहीं है। बस एक हल्का सा फीलिंग ला कर तस्वुर में करके बस ऐसा। अब ये भी नहीं कि पूरी भूख उसको पहुंचे, पूरी हवा उसको जाए, मुराद ये है कि मैं अल्लाह के नाम पर तुझे दम करता हूँ, मिन कुल्ली शयीन, हर चीज़ से, कौन सी चीज? यूज ही का। इमेजिन करें, बल्कि या आप सोचा करें, जब ये दुआएं पढ़ें तो सोचा करें क्या क्या चीज मुझे तकलीफ देती है, कौन सी चीजें हैं। आप देखिए, हम तो कहते हैं खट्टा खा लें तो गला खराब हो जाता है, बर्फ खा लें तो हमें खांसी हो जाती है, और बहुत ज्यादा नट्स खा लें तो गर्मी हो जाती है। यानी आप देखें, हर वो चीज जिसमें खैर है वो भी बंदे को तकलीफ देती है। वही खाना आप रोज खाते हैं तो आपको खैर मिलती है, और वही खाने का लुकमा बाज दफा आपके गले की बजाय आपके सांस की नाली में जाता है तो मौत का जरिया बनता है। उच्छू लग जाता है पानी पीते हुए और आपका सांस रुकने लगता है। तो हर चीज में एक ही वक्त में खैर का भी पहलू होता है और शर का भी पहलू होता है। जिन सिस्टर को हम देखने गए, कल भी उनके घर दर्श था, तो जब वो पहले दिन मैं थी तो वो बहुत ऐसे कराह रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आपने इनको कुछ दिया। कहती डॉक्टर्स मना करते हैं। जो उनकी बेटी ने बताया कि अब हम उनको अगर पानी की एक चम्मच उनके मुंह में डालते हैं ना, तो वो भी उनको तकलीफ देती है कि वो उनके अंदर नीचे नहीं जा रही तो मुंह में इधर कहीं कुछ कोई जो प्रॉब्लम है तो वो उससे करके वापस आ जाती है। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि हम तो घटा घट गिलासों के गिलास पी जाते हैं, यही पानी तकलीफ देने लग जाता है। तो ये अल्लाह की कुदरत है, किस चीज में खैर डाले किस चीज में शर डाले। तो लिहाजा आप क्या कहते हैं, मिन कुल्ली शय यूजी का। फर्श पे आप चलते हैं, आपने खुद मजाक लगवाया, आपने खुद इतना खूबसूरत स्लिपरी फ्लोर बनाया, उसी पे पाँव अटकेगा और पाँव की हड्डी टूटने का डर है। वही जूते जो आपके मेरे पाँव का तहफुज होते हैं, वही जूते बाज दफा हमारे मोच का जरिया बनते हैं। तो हर चीज में शर है। हम अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह जो तूने हमें दे दिए ना उसमें खैर दे। गाड़ी आप चलाते हैं रोज शर खैर है ना, अल्लाह ना करे अगर गाड़ी का हादसा हो जाए तो वो बंदा ज्यादा इंजर्ड होगा या पैदल चलने वाले को ज्यादा खतरे हैं। आप इमेजिन करें, जितनी दुनिया की कोई बड़ी ब्लेसिंग या नेमत है ना हमारे पास, उतना ही ज्यादा उसके खतरे ज्यादा है। मतलब गाड़ी में बैठेंगे ना तो फायदा है, लेकिन हादसा होगा तो हो सकता है कि आपको चोट लगे लेकिन थोड़ी कम लगे, बात समझ गए। लेकिन अगर जहाज का फायदा ज्यादा है, लेकिन अगर अल्लाह ना करे जहाज क्रैश हो तो आपकी हड्डी भी नहीं बचेगी। ये समझाना चाह रही हूँ, जितनी बड़ी नेमत उतना बड़ा शर। पैदल चलने वाले तो बच ही जाते हैं, गाड़ियों और ट्रेनों के अंदर बैठने वाले हादसों का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो लिहाजा हर चीज का शर। औलाद खैर है ना, इसमें भी शर आ जाता है। हर नेमत जहमत बन जाती है कब, जब वो अल्लाह के नाम से खाली होती है। इसलिए जरूरत है इस बात की कि हर वक्त इंसान अपनी नेमतों को देखे और अल्लाह से ये कहे कि अल्लाह मेरे लिए इसको खैर का जरिया बना, शर का ना बना। हत्ता कि बारिश खैर की जरिया है ना, तो जब बारिश बहुत ज्यादा होती थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया, कि अल्लाह नफे वाली बारिश करना। फिर बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, एक जुमे को साहबा ने फरमाइश की तो अल्लाह के नबी ने ये दुआ की, बहुत ही बारिश हुई बहुत ही बारिश हुई, कि अगले जुमे को फिर उन्होंने आकर कहा कि अल्लाह के नबी अब दुआ करें कि बारिश ना आए, क्योंकि अब इसकी वजह से तुम्हारे घर गिरने लग गए हैं। तो फिर अल्लाह के नबी ने फिर वो दुआ की कि अल्लाह हम पे नहीं बल्कि इर्द गिर्द की वादियों पे बरसा। तो जिंदगी में हर खैर के अंदर शर मौजूद है। फिर इसी तरह आगे फरमाया, वमिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन, हर नफ्स के शर से। अब मुझे बताइए कि किस किस नफ्स का शर होता है इंसान के साथ। सबसे पहले तो हर इंसान का अपना शर होता है। आपको कहते हैं कि हम सब के ऊपर दो शैतान मुसल्लत, एक वो इबलीस जो ओवरऑल एक लीडर है और वही असाइन करता है, वो कॉमनली हर एक के ऊपर है, बट दूसरा हम सब के अपने साथ लगा हुआ हमजात, जिसको हमजात कहते हैं ना, हर बंदे का एक इंडिविजुअल शैतान होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में से हर एक के साथ शैतान भी है और फरिश्ता भी है। शैतान उसको बुराई का हुक्म देता है और फरिश्ता उसको नेकी का हुक्म देता है। साहबा ने फौरन पूछा कि अल्लाह के नबी आपके ऊपर भी शैतान है मुसल्लत। कहा मेरे ऊपर भी है, लेकिन मेरा शैतान मुसलमान हो चुका है और वो अब मुझे बुराई का हुक्म नहीं देता। ये कब होता है? जब आप एक काम अच्छा करते हैं ना, तो आप फील करते हैं कि आपके अंदर दूसरा अच्छा काम करने की एनर्जी आती है। क्या ऐसा है? आप एक दिन की क्लास ले लें पूरे दिल के साथ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, अगली क्लास के लिए इंतजार लग जाएगा, कब होगी, क्या होगा, कितनी देर रह गई, कब निकलूं, है कि नहीं? ये एनर्जी जो एक दिन की क्लास से आपको मिली थी ना, ये असल में वो फरिश्ते की खुशहाल आपसे खुश होने की दलील है। खुश हो जाता है वो, आपको बार बार याद कराता है जल्दी करो उठ जाओ, देर हो गई है, देर हो रही है, देर ना हो फटाफट करो, क्योंकि आपने अच्छी बात मानी। अल्लाह के नबी ने भी यही बात फरमाई कि जब एक इंसान, शैतान उसको बुरे काम का हुक्म देता है, अगर इंसान उसकी बात मानकर एक दिन वो बुराई कर लेता है ना, तो शैतान बड़ा खुश होता है। तो शैतान जब खुश होता है ना, तो उस बंदे के अंदर बुराई का दाहिया पैदा हो जाता है, फिर अगली बुराई भी आसान हो जाती है, कहते हैं ना, शराब के हर घूंट में से एक और घूंट सार उठा के कहते हैं मुझे भी पियो। एक बुराई करेंगे ना, अगली बुराई खुद ही आसान हो जाएगी। इसी तरह अच्छा काम करेंगे तो फरिश्ता दोस्त बनेगा, वो अगले दिन खुद ही आपको फजर के लिए उठा देगा। तो मेरी आपकी चॉइस है कि मैं अपने लिए नेकियां आसान करवाऊं या गुनाह आसान कराऊं। अगर हम में से किसी को भी नेकी मुश्किल लगती है ना, तो ये दुआ पढ़ा करें कि अल्लाह मेरे अपने नफ्स से बचा। अभी तो हम ये दुआ कर रहे हैं ना, लेकिन आपको पता है कि अपने नफ्स के शर से कितनी दुआएं जो अल्लाह के नबी मांगते थे। कोई खुतबा ऐसा नहीं था जिसको शुरू करते और अल्लाह के नबी ये ना कहते कि नाउज़ु बिका मिन शुरूरी अनफुसीना, कि अल्लाह हम अपने नफ्स की शरारतों से पनाह मांगते हैं। हजरत आयशा ने पूछा कि इंसान का नफ्स भी शरारत करता है? आयशा, हाँ। फिर आपने एक मौके पे कहा कि हम पनाह मांगते हैं शैतानों और जिन्नों से, तो कहा क्या इंसानों में भी जिन होते हैं, इंसानों में भी शैतान होते हैं? कहा हाँ, वो बल्कि जिन्नों के शैतानों से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो ये सारी चीजें मेरे आपके लिए क्या बताती हैं कि हम सब इन चीजों को देखें और महसूस करें कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ फितनों में रखा है। और नफ्स का शर जो है सबसे बड़ा होता है, इसके बाद बाकी रास्ते खुल जाते हैं। फिर दूसरी चीज, औ ऐनिन हासिदिन, हसद वाली निगाह से बचा। ये भी बहुत ही खूबसूरत बात है जो हम सबके लिए, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, कुल्लु जी नेमतिन महसूद, कुल्लु हर जी नेमतिन नेमत वाला महसूद हसद किया जाता है। यानी ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, जिसको कोई नेमत ज्यादा मिलती है ना, उससे हसद करने वाले भी ज्यादा होते हैं। हजरत यूसुफ को खूबसूरती मिली, बाप की मोहब्बत मिली, आला अखलाक मिला, भाइयों का हसद शुरू हो गया। और सबसे बुरा हसद इल्म का हसद होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मदीना के बनी इसराइलियों का हसद था, उसको तो कुरान ने खोल के बयान कर दिया कि वो आके नबी सल्लम को ताड़ते थे, आंखों से कुचलाते थे, कहते थे कि आपको थोड़ा सा पजल करें, आप ये क्या बातें करते, कभी राय ना कहते, कभी सवाल उल्टे सीधे पूछते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हासिद की नजर से बचाने के लिए, आज जितना डिस्प्ले कल्चर है, मैं इसको फिर कहूंगी कि आज का कल्चर डिस्प्ले कल्चर है। नेमते अल्लाह की बंदों के पास शुरू से थी, अबू बकर के पास दौलत बड़ी थी, अब्दुलरहमान के पास दौलत बड़ी थी और खूबसूरती भी बहुत ही लोगों के पास, लेकिन चूंकि डिस्प्ले नहीं था ना, तो लोगों को नहीं पता चलता था कि क्या लोगों के पास है क्या नहीं। आज बस किसी को कड़वी ना लग जाए बात कि आज उतना है नहीं है जितना दिखाते हैं, कर्जों के बोझ में लदे हुए, चाहे किस्तों से जान जा रही है, लेकिन लोगों को देख के हमें ऐसे लगता है कि हम कोई नवाब खानदान से ताल्लुक रखते हैं। और ख़ास तौर पे फिर जब हमारी खुशियों के मौके और हमारा डिस्प्ले आता है, उस दिन भी नज़रें लगती हैं। मैं पूरे यकीन और शऊर से कह सकती हूँ कि आज मुसलमानों की जो शादियाँ टूटती हैं ना, जो डिवोर्स रेशो है या जो क्राइसिस है, उसकी बहुत सारी और वजूहात में एक वजह यह है कि शादी पे नज़र लग जाती है, हसद हो जाता है, रुकावट आती है। अगर आप खुश हैं उस दिन तो 10 लोग नाराज होके जाते हैं। आप बड़े अपने आप में खुश हैं कि आज नहीं, अगर बेटे की शादी पे ये नहीं करना तो कब करना है, तो कई आहें भर के भी तो जाते हैं ना जो नहीं कर सकते। आपकी बेटी को ऐसा सुरहाब कबर मिल गया तो बाकी बेटियों वाले वहां से हसद वाली नजरों से जाते हैं कि हमारी बेटियों के रिश्ते क्यों नहीं हुए। तो जितना नेमतों को कवर करें, छुपाएं, अपने तक रखें, फम अभी नेमत ही रब्बी का फहदिस, बस इतना ही काफी है। जो नेमत अल्लाह ने दी उसको बयान करो, तहदीस नेमत करो, और वो तहदीस नेमत दूसरों को जला के नहीं होती, कितना छिछोर पाना है। और आप देखिए कितना एक बंदे का यानी छोटा पाना है कि दूसरों को जलाए और खुश हो, पैर देखेंगे मेरे कपड़े तो फिर तो बस चुप ही हो जाएंगे, उंगली जो है दांतों तले ही दब जाएगी। क्या दूसरे को जलाकर खुश होना है? कभी देखे जरा, अभी नहीं बताना, एंड पे दिखाएंगे सबको। असल में जब नेमतों को हम दिखाते तो हम ये नहीं कह रहे होते कि ये नेमत है देखो, हम कहते जरा इनकी भी देखो, चुप हो गई थी, आगे से बोल ही नहीं सकी, आंखें ही खुल गई, तो हम खुद कहते हैं आओ हम पे हसद करो। रियली एक है आपका अपने रब की नेमतों को लेना देना। अल्लाह ने बच्चे दिए, घर दिए, माल दिए, एंजॉय करे, खाए पिए, लेकिन वो बड़ों की एक बात आज हमने भुलाई और उसकी वजह से उसके कितने फितने आ गए कि चादर देख कर पाँव फैलाओ। सुनी भी ये बात आप लोगों ने? पहले दौर में ये लोग कहते थे, ये बिस्तर पे जाके तो आपको याद आ जाती होगी, लेकिन हमें आज पूरे लाइफस्टाइल में ये चीज़ नहीं मिलती। चादरें तो हमारी कहाँ से कटी हुई हैं, हमारे तो पाँव क्या, हमारे तो आधे आधे जिस्म बाहर हैं उन चादरों से। पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, मरते हैं तो कोई दौलत थोड़ी छोड़ के जाते हैं, कर्जे छोड़ के जाते हैं, लेकिन बाहर हमारे नाम कितनी बड़ी प्लेट लगी हुई है, कसरे फुला और बहते गुल बैत और बहते गुल। तो ये सारी चीजें हसद को प्रमोट करती हैं। अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे। फिर इसके बाद अल्लाह यशफी का, अल्लाह तुझे शिफा दे, कितना प्यारा सा लफ्ज है, छोटी सी बात है, बस अल्लाह आपको शिफा दे दे। बिस्मिल्लाह यरकी का, मैं अल्लाह के नाम पर तुझे दम करती हूँ। पिछली दुआ को अगर आप इससे रिलेट करें ना, तो हमने देखा था तकरीबन 13-14 नाम थे अल्लाह ताला के, यानी नेम्स और एट्रीब्यूट्स, और इसमें अगर आप नोट करें ना तो सिर्फ एक ही नाम है। बिल्कुल मुझे कुल औजु बिरब्बिन नास और फलक का तकाबुल दिख रहा है। उधर तीन सिफात अल्लाह की, कुल औजु रब्बिन नास, मलिक इन्नास, इलाह इन्नास, अल्लाह इलाह, फिर मालिक और फिर रब। जबकि सूरत फलक में क्या है, कुल औजु बिरब्बिल फलक, बस एक नाम है अल्लाह का, और उसके बाद तीन चीजों से पनाह ली हुई है। तो ये कुरान का हुसन है, अल्लाह का एक नाम भी बहुत बड़ा है, और अल्लाह तआला का जो असली नाम है ना वो अल्लाह ही है, जिससे फिर बाकी सारे नाम आते हैं। तो अब आप देखिए कि आप इसको उर्दू में पढ़ें तो आप कहते हैं कि क्या मांगा हमने, इसमें तो कोई मुश्किल लफ्ज़ भी नहीं थे और इसमें तो कोई ऐसी चीज़ें भी नहीं हमें दिखी। लेकिन अल्लाह के नाम के साथ ये सिंपल सी दुआ मांगना भी बाज़ दफ़ा इंसान को बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से बचा देता है। ठीक है, अब शऊर के साथ सब मिलके मांगते हैं, मैं भी बोलती हूँ, मेरे साथ साथ ही पढ़ते जाए। बिस्मिल्लाह अरकीका मिन कुल्ली शयिन युजीका व मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यशफीका बिस्मिल्लाह अरकीका। अब आप अपने साथ जो बैठे हुए ना साथी, यानी आप तीन तीन लोग बैठे हुए इस वक्त वैसे तो, लेकिन एक दूसरे जो आपके साथ है ना उनकी नियत करें, उनको तसव्वुर में लाएं और उनके लिए ये दुआ मांगे। ठीक है, जैसे आप इनके लिए मांगे, ये इनके लिए मांगे, आप एक दूसरे के लिए ये दुआ ऊंची बात से मांगे, और क्या पता कि यहाँ बैठे बैठे कई बीमारियां दूर हो जाए। मांगिए शाबाश। कुछ इफाका महसूस हो रहा है एक दूसरे की भूखों से, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आसान सा इलाज है ना, तो अपने लिए भी मांग सकते, अपने लिए चलिए एक दफा मांगे, वो अपने ऊपर भी दम कर सकते हैं, आपको पता ना, अपनी नियत करके ऊंची आवाज से पढ़े। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, इतने काफी है। मैं चाहती हूँ कि आपको एक एक की दुआ करवाऊं ताकि आप याद करें। ये पिछली 9 दुआएं याद हो गई हैं, 8 आज नवी की है ना, और जब बीच में वीकेंड आता है तो उसमें सारी दुआओं को बीच से रिवाइज किया करें। आज देखिए ना हमारी 9 हो गई हैं, और मैं अभी देख के आपको बताती हूँ, 2 रह गई हैं सिर्फ इस चैप्टर की, 11 टोटल है, उसके बाद नजरे बद शुरू हो जाएगी ना। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए जी, यहाँ पे ये तो पूरा हुआ। जी सवाल है कोई, पूछिए। खुद को ही कह लें मैं तुझको करती हूँ, हाँ जी ऐसे ही पढ़ ले, मैं समझ गई ना, यानी इनका सवाल यह है कि अगर मैं अपने लिए करना हो तो क्या हम लफ्ज बदलेंगे। अब हर एक को तो नहीं पता ना का मानी तू और मेरा मानी या है, तो बेहतर है आप इसको अपने आप को कहे कि फुलां मैं तुझे दम करती हूँ, और हमारे असलाफ ऐसे ही करते थे, अपने आप को मुखातिब किया करते थे, अपने नफ्स को करना। जी जी ये भी कर सकते हैं, आपके पास नहीं है कोई शर्त, जैसे आपके बच्चे हैं वट एवर कोई, तो बस दुआ है। देखिए मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की है कि ये कोई जंतर मंतर नहीं होता, और ये कोई ये नहीं है कि फलां बाबा जी ने फूक मारनी। आज तो मैंने देखा है, सुना है, बल्कि देखा नहीं है कि लोग टीवी से फूके मरवाते हैं, फोन कर करके लोगों से बुजुर्गों को कहते हैं, फिर वो फूक मारते हैं, फिर वो इस्तखारे करते हैं। तो ये दुआ एक बड़ा जिंदा ताल्लुक है, आप अपनी फीलिंग्स के साथ कह रहे हैं कि अल्लाह फलां को अपनी हिफाजत में दे दें, आप वो उस तक फूक गई नहीं गई, आपका ताल्लुक चूके अल्लाह ताला से, और आपको पता है कि अल्लाह ताला को पता चल गया। ठीक है, तो आप दूसरे के लिए कर सकते हैं, उस तक बात जाए ना जाए, दुआ तो है ही है ना, कुछ तो मिलेगा ना इंशाल्लाह। ठीक है, और कोई बात क्लियर है? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह।